محمد. تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے، دعائے وداع ماہ رمضان، جو کہ صحیفہ سجادیہ میں جس دعا کا نمبر کیا ہے 45. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا ابھی مقصد ان کلمات کو اسٹڈی کرنا ہے کہ جو یعنی وداؤٹ رمضان ہے انفیکٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے مخصوص گفتگو ہے یا مناجات ہے امام علیہ السلام کی، لیکن ہم اس سے پہلے اور اینڈ میں جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو جنرل ہیں، یہ یونیورسل ایک رولز کو بتا رہی ہیں، ہم اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے پچھلی دفعہ جب بات کی تھی تو اس چیز کو دیکھا تھا کہ یعنی آپ نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہی تھا کہ خدا ہم لوگوں سے کس طریقے سے ڈیلنگ کرتا ہے. خدا نے ہمارے ساتھ، یعنی کہ اس میں جو اصل بات ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کس قسم کا رشتہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معرفت کا پہلو ہے. اور اسی جگہ پر جو لیکنگ ہے وہ ہمیں مطلب مسلسل کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں جیسے آپ کو ایک اوور آل کنسیپٹ کے حوالے سے بات کروں کہ ہماری جو بھی ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں یا ہماری جو بھی اجتماعی مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ مسئلہ ہو گیا، یمن میں مسئلہ ہو گیا، فلسطین میں ہو گیا، ہمارے کنٹریز میں ہو گیا، کسی جگہ پر، یا تو اجتماعی لیول پر پرابلمز ہیں یا میری پرسنل لائف میں یا کمیونٹی لیول پر پرابلمز ہیں. تو اب ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑے بات آتی ہے کہ بھائی یہ پرابلمز جو ہیں ان کا سلوشنز کس کے پاس سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرابلمز کیا ہیں اور ان پرابلمز کا جو سلوشن ہے نا، یہ دے گا کون؟ یہ مسئلے کا حل آئے گا کہاں سے؟ تو اس میں گھوم پھر کے ہم جہاں تک پہنچتے ہیں نا، یعنی کہ پریکٹیکلی ہم جس جگہ تک پہنچتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اصل میں مسئلے کو ہم ہی حل کریں گے، ہے نا؟ یعنی مسئلے کی جو پرابلم ہے اس کی کنجیاں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اس کے لیے پھر اسی کے لیے ہم مختلف قسم کے اقدامات کرنا شروع ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی اپروچز اختیار کرتے ہیں. لیکن ایونچولی ہمارا جو بھی طریقہ کار ہے اس میں یہ بات نہیں دکھتی کہ ہم اس پر بیس کرتے ہوں کہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں نا وہ حل فقط اور فقط اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب خدا کا اذن اور مدد اور نصرت ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہر جگہ جب بھی جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات اگر مومنین ہیں تو خدا کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے اصل میں بلیف کہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم میں سولو کروں گا میرے اقدامات کی بنا پر یا میرے جو بھی اپروچز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. یعنی کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ لوگوں نے انڈیا میں مسلمانوں نے سوچا کہ بھائی ہم یہاں پر ایک پرابلم میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری پرابلم کا حل یہ ہے کہ ہم ایک الگ ملک بنا لیں، الگ وطن بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بہت محنت مشقت ہوئی، جو بھی ہوا قربانیاں گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کا. یعنی آپ نے ایک ملک بھی بنا لیا لیکن ملک بنانے کے بعد اور اتنے 30-40 لاکھ لوگ بھی قتل ہو گئے اس ملک بنانے میں، لیکن یہ کہ جو چیز آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی تقریباً ہر جگہ ہو رہا ہے پوری تاریخ میں. تو جو چیز یعنی قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کم از کم میری ریڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے، آپ لوگ بھی اپنی رائے اس میں دے سکتے ہیں، کہ جو فکر قرآن اور اہل بیت سے آ رہی ہے نا زندگی گزارنے کے حوالے سے، ہم اس پر یا تو آتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھنے کے باوجود وہاں پر آ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گھوم پھر کے ہم کس جگہ پہ آ جاتے ہیں، उसी जगह पर आ जाते हैं कि जी मसले का हल ना मुझसे वाबस्ता है, मसले का हल मैं निकालूंगा, मसले का हल मेरी अकल से है, मेरी सोच है। आप जो भी करें, यानी जो भी करना है आप करें, लेकिन हमेशा किस पर आपका पूरा भरोसा हो? खुदा की नुसरत, खुदा की ताकत पर। यानी जैसे इसमें हमें इस तकरीबन तकरीबन अगर मैं कहूँ कि जितनी भी नोन हमारे पास हिस्ट्री है उसमें सिर्फ एक मिसाल ऐसी है, सिर्फ एक मिसाल ऐसी है कि जहाँ पर हमको वो वाली बात नज़र आती है, वो कौन सी है? इमाम खुमैनी लेड रेवोल्यूशन। ठीक है, इमाम खुमैनी लेड, यानी इसमें खुद उस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि बाकी सारे के सारे लोग भी उतने ही समझदार थे जो उनके अराउंड थे, लेकिन उस पर्सनैलिटी का ये बहुत बड़ा वो रोल है कि उन्होंने, इन्हें जितना भी उनका जो चीज़ उन्होंने लीड की है, जिसको लेके चले हैं ना, वो प्योरली इसी बेसिस पे लेके चले। और फिर उन्होंने ये बात बाकायदा कही भी है कि यानी जो कुछ भी हुआ वो हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो खुदा ने किया। ठीक है, और उसमें यही इन्हें खुदा ने किया का क्या मतलब है? खुदा ने किया का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन जब आप अपनी समझ से एक इकदाम करते हैं, और बहुत सारे मौाक़े ऐसे आते हैं कि जहाँ खुदा आपका प्लान जो है ना वो स्क्रैप कर देता है, खुदा आपका प्लान उठा के बिन में डाल देता है। आपको नज़र आता है कि मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, वहाँ पे फ़र्क समझ में आता है मुवाहिद और गैर मुवाहिद का, कि जो तौहीद की बिना पर अपने काम को लेके चल रहा होता है ना, वो ये नहीं कि बेअमल होता है, ये नहीं कि वो बैकवर्ड होता है या पैसिव होता है, लेकिन जब ऐसे मौाक़े आते हैं ज़िंदगी में कि जहाँ पर आपकी सालों की मेहनत आपको नज़र आ रहा होता है मिट्टी में मिल गई, उस वक्त मुवाहिद का यकीन क्या होता है कि ये खुदा है जिस पर मैंने भरोसा किया, और ये खुदा ही है कि जो इसमें से, इस राख के ढेर में से मेरा मेरा मतलब निकाल के देगा। ठीक है, यानी इसमें मेरे लिए भला नहीं था, ये राह मेरे लिए दुरुस्त नहीं थी जो मैं सोच रहा था। यानी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल खुद कुरान करीम में मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ज़िंदगी गुजार रहे थे लाइक अ प्रिंस, तो उन्होंने बहरहाल अपनी कौम के साथ यानी बनी इसराइल के साथ भी रवाबित रखे हुए थे, और वो उनको यानी वही इनकलाब खातिर वो एक उठा रहे थे, क्योंकि कुरान ने वो लोग जो बनी इसराइल के थे और उनको कहा है कि वो मूसा के शियों में से थे, शिया का मतलब है वो उनके फॉलोअर्स थे उस वक्त। ठीक है, और फिर वही वाक़या अचानक से पेश आया कि एक था बंदा जिसको शिया ही कहा है, वो लड़ रहा था फिरौन की कौम वाले से, आपने वाक़या पढ़ा होगा सूरह कसस में, तो हज़रत मूसा ने उसको बचाया, एक हाथ मारा वो मर गया, और वहाँ से क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पूरा इनकलाब प्लान कर रहे थे वो खुदा के इज़्ज़त से वो सारा का सारा बिल्कुल ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो पूरा मंसूबा ही ख़त्म हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में मिस्र से फ़रार होना पड़ा। ठीक है, फिर वो मदीन गए, 10 साल वहाँ से गुजारे, और फिर वो तमाम तमाम चीज़ें। तो ये जो दो तरीक़े हैं ना, एक तरीक़ा वो है कि जो इस्मत वाली राह हमको बता रही होती है, और एक वो तरीक़ा है कि जो हमारी दुनियावी अक़ल हमको सिखा रही होती है। इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है, और यानी इसी वजह से जिस डायलेमा में हम लोग फंसे हुए होते हैं वो क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम अहले बैत का नाम भी लेते हैं, हम इमाम की बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी उस खामी की वजह से ना, उस डिफेक्ट की वजह से हम कभी भी उस रास्ते पे नहीं आ पाते, उस राह को इख्तियार नहीं कर पाते। यानी हम कहाँ पे फंसे हुए होते हैं, हमारी नज़र जो है ना जवाहिर में, अपेरेंट में जो चीज़ें दिख रही होती हैं, हम उसी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सही है, यानी जैसे उसका मतलब क्या है कि जो बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि जो दुआ और सवाल का जो फ़र्क पे हमने बात की थी, तो यानी उसमें भी एक चीज़ है कि आप दीन क्यों इख्तियार करेंगे, आप खुदा का नाम क्यों लेंगे, आप खुदा की इबादत क्यों करेंगे, इसलिए कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक इस्लामी हुकूमत कायम है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है, ये नुक्ता नज़र दुरुस्त है कि हम ये तमाम की तमाम चीज़ें इसलिए लें, यानी कुरान इसलिए लें, बंदगी इसलिए लें, ईमान और तकवा पर इसलिए कायम हों, ठीक है, कि हम जो है ना वो मिसाल के तौर पर दुनिया में जो टायरेंट्स हैं उनको शिकस्त दे दें या हम एक इस्लामी हुकूमत कायम कर लें। ये एक मिड टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये एक मिड टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपकी डेस्टिनी नहीं हो सकती, ये कभी भी दीन का मकसद नहीं है। सही है, दीन के जो बुनियादी मकासद हैं, जिसके लिए दीन आया और जिसके लिए दीन ने तमाम तबलीगात की, उसका नंबर वन मकसद है इंसान के ट्रू पोटेंशियल को एक्चुअल करना। तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। खुदा ने जिस शख्सियत को बनाया, जिसको कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, या जिसके बारे में कहा कि जिसने मेरी अमानत का बोझ उठाया, उसके उसके अंदर खुदा ने जो सलाहियतें रखी हैं ना बहैसियत इंसान, जिसके बारे में ये कहा कि लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, के सबसे खूबसूरत फॉर्मूले या टेम्पलेट पर खुदा ने किसको खल्क किया, वजूद इंसान को खल्क किया। तो तमाम की तमाम चीज़ों का मकसद जो है ना वो इस इंसानी फॉर्मूले को या फॉर्मूलेशन को या उस पोटेंशियल को अपने कमाल तक ले जाना है। तो जितनी भी चीज़ें आती हैं ना दरमियान में, चाहे आप उसको तज़किया नफ्स की बात करें, चाहे आप इबादात की बात करें, चाहे आप हुकूमत इस्लामी की बात करें या जालिमों को ख़त्म करने की बात करें, अगर ये तमाम के तमाम आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ये आपके उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को सर्व और सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कामयाबी के रास्ते पे नहीं हैं। इसीलिए हुकूमतें इस्लाम के नाम पे बनती हैं और कोई कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें, यानी कि शुरू शुरू में इतनी खिलाफतें बन गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप देखें कि वो कोई नतीजा आपके हाथ में आ नहीं पाया।
ये तो
ठीक
आपने कमाल की बात की है,
है,
इसमें कमाल जो है उसको हम क्या समझेंगे, वो इल्म अस्माए कुल
इल्म अस्मा है और वही तकर्रुबे खुदा है। इल्म अस्मा और तकर्रुबे खुदा, यानी कमाले कमाले इंसान ये है, कमाल इंसान यह है कि इंसान अपने आप में, यानी अपने आप को सिफात खुदा का मजहर बनाए, खुदा की सिफात इंसान की ज़ात में झलकती हों, जलवागर हों, और उन सिफात को लेकर इंसान पूरी कायनात को तरक्की देने के काबिल बनाए। तो अच्छा, ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये हमें जब हम कुरान से करीब होते हैं, जब हम मासूम की कलमात से करीब होते हैं, तो हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। लेकिन हमारा जो जितना भी रिलीजियस लैंडस्केप है ना, वो अगर आप गौर फरमाएं तो वो ज़्यादातर अपनी सोच समझ के लिहाज से लोगों ने बनाया हुआ है। यानी थोड़ी थोड़ी बातें कोई लेता है, कोई कुरान से कुछ ले लिया, कुछ कलाम मासूम से कुछ ले लिया, कुछ चीज़ें इधर उधर से लीं और उसको मिला के बनाया, और उस पर कोटिंग सारी कौन सी चढ़ाई, जो आपकी मर्ज़ी की है, जो आपको बात पसंद आ रही है, ठीक है, जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन आ रही है। यानी वो वाली जो हालत है कि हम अपने तमाम जितने भी हमारे ख्यालात हैं, तफक्कुरात हैं, जितने भी बायसेज हैं, सब को दरकिनार करें, सबको साइडलाइन करें, और लाइक अ चाइल्ड जो है ना हम कुरान और मासूम के सामने अपना जानू जानू अदब तय करके बैठे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, आप हमें सिखाएं कि हमें कैसा होना चाहिए, आप हमें बताएं, आप हमारी तरबियत करें, आप हमें तालीम दें। ये वाली बात आपको तकरीबन, यानी ये नापैद है। सही, और इस चीज को आप जितना दिल चाहे, मेरी इस बात को जितना दिल चाहे आप रिसर्च कर लीजिए कि हर जगह जो दीन का नैरेटिव है ना वो इसी तरीके से आ रहा है हमारे पास, कि कुछ बातें इधर से होती हैं कुछ उधर से होती हैं, ताकि आपको ये मतलब एक फ्लेवर पूरा मिले कि हाँ जी आप दीनदारी के उसमें ही डोमेन में ही हैं, लेकिन वो सब लपेट लपाट के उसके जो पूरा माजून बना के और उसको अपनी उस पर कोटिंग वोटिंग चढ़ा के जिसको जो पसंद आ रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये जिसका रुझान जिस तरफ है, और वो एक दीन के नाम पर पेश कर दिया जाता है और फिर लोग जो है ना उसके पीछे लग जाते हैं अपने अपने, क्योंकि उनके भी अपने जिसकी पसंद है नापसंद है वो उसके पीछे लगे रहते हैं। ठीक, तो बहरहाल मैं दुआ की तरफ वापस आता हूँ कि यानी दुआओं में ख़ास तौर से ज़ियारतों में कलाम इलाही में, तो यहाँ जिस दुआ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम जो बात शुरू कर रहे हैं कि खुदा हमसे किस तरीके का रिश्ता कायम करता है और ख़ुदा हमारे साथ कैसे डील करता है। ठीक है, तो उसमें जितने हमने कुछ फ़िक्रे पढ़े थे उससे आगे चलते हैं कि खुदा जो है वो क्या करता है, यानी ये जुमला बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि वह अमहलता मन कफ़दा लनफ्सिही ही बिज़ुल्म, कि जो इंसान ख़ुद अपने नफ्स पर जुल्म करने का इरादा रखता है खुदा उसको मोहलत देता है। किस बात की मोहलत देता है कि अपने नफ्स पर और जुल्म करो? मोहलत देने का मकसद क्या है कि अपने जुल्म यानी तुम अपने ऊपर जो जुल्म कर रहे हो गुनाहों के ज़रिए से उसको रियलाइज करके और अपनी इस्लाह करो। खुदा उसको मोहलत देता है कि जो इरादा करता है अपने नफ्स पर जुल्म करने का, तस्तन विरोहम बेअनाते का इलल इनाबते, और खुदा जो है वो उनके लोगों के इंतज़ार में रहता है कि वो कब उसकी तरफ रुजू करेंगे, कब उसकी तरफ पलटेंगे। यानी खुदा लोगों के गुनाहगारों के इंतज़ार में है। किस बात के इंतज़ार में? इस बात के इंतज़ार में नहीं है कि उनको अजाब दे, बल्कि इस बात के इंतज़ार में है कि वो कब खुदा की तरफ पलटते हैं। व तत्रुकु मुआजलतहुम इलत्तौबते लकैला यहलिका अलैका हालिकुहुम, और उनका उनके लिए ने उनको छोड़ देता है, किस लिए? कि वो तौबा करें, तौबा करें, ताकि वो लोग जो हैं वो अपनी इन गलत हरकतों की वजह से हलाक ना हो जाए। ठीक है, इन्हें जो जुमला मैंने आप लोगों से बारहा कहा है कि हमें बाज़ोकात इस तरीके से दीन बताया जाता है कि जैसे मतलब जब अजाब खुदा को इस तरीके से पेश किया जाता है कि गोया कि खुदा जो है ना वो इस बात के इंतज़ार में है कि लोगों को कैसे पनिश किया जाए कि आपने ज़रा सा ये किया तो उसकी ये इतनी सज़ा, ज़रा सा ये गलती हुई तो उसकी इतनी सज़ा, जबकि हकीकतन जो है खुदा हमेशा इस बात की निज़ाम खुदा पूरी कोशिश करता है कि कोई हलाक ना हो, कोई अजाब ना जाए, कोई जहन्नम में ना जाए। यानी कि अगर आप इस निज़ाम को देखें स्पेशली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मासूमीन अलैहिस्सलाम, तो आपको ये बात बहुत वाज़ह तौर से नज़र आएगी कि खुदा की पूरी कोशिश ये है कि कोई भी बर्बाद ना हो, कोई भी हलाक ना हो, तो ये कोई इंसान भी ख़राब ना होने पाए। तो इस बिना पर जैसे कि जैसे आयतुल्लाह जवादी आमली दूसरे बुज़ुर्ग उलमा भी एक बात कहते हैं कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो आपको जहन्नम भी रहमत खुदा नज़र आएगी। यानी जब अल्लाह ने जहन्नम रखी है या सख्ती रखी है या अजाब की वईद रखी है, अजाब से डराया है, तो ये भी रहमत है। क्योंकि देखें इंसानों में तीन किस्म के लोग हैं ना, जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जुमला है, तीन लोग समझ में आते हैं। एक वो लोग हैं जो खुदा को लायक़ बंदगी समझकर खुदा की इबादत करते हैं, यानी वो लोग हैं कि जिनकी अक्लें कमाल पर हैं, जो हक़ को हक़ जानते हैं बातिल को बातिल जानते हैं, और वो हक़ की बंदगी हक़ की खातिर करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग इंसानियत में कितने हैं? बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। अगर प्रैक्टिकली आप देखें कि वो लोग जो हर किस्म के मतलब ज़ाती मफादात से बुलंद होकर सिर्फ हक को हक जानकर उसके आगे झुकें, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ठीक है, तो उसके बाद यानी अगर खुदा फकत और फकत जो कि जस्ट तो यही है ना, जस्टिस तो यही है, यही मुतालबा हकीकी है ना कि भाई सच को सच मान के तुम उसको कबूल करो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ना। लेकिन आप देखें कि बाकी जो दो कैटेगरीज अलाउ की गई हैं, यानी वो लोग के जो रिवॉर्ड या जन्नत की लालच में इबादत करते हैं, या वो लोग जो जहन्नम या अजाब के खौफ से इबादत करते हैं, और दोनों बहर हाल कबूल हैं, यानी खुदा उनको रद्द नहीं कर रहा। इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि वो रिजेक्टेड हैं खुदा की बात से, कि जो जहन्नम के खौफ से इबादत कर रहे हैं या जो जन्नत की लालच में इबादत। हाँ, आपने ये कहा है कि वो उस मेयार पे नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं करना। यानी खुदा जब उन लोगों को, उलुल अलबाब को या हकीकी मोमिनीन अहले तकवा को जो अजर देगा, फिर वो एक्सपेक्ट नहीं करना तुम कि उनके मकामात को आखिरत में देख के गिरी इबादत तो हम भी करते थे, खुदा तो हम भी मानते थे। लेकिन ये फ़र्क डेफिनेटली होगा, लेकिन वो भी रिजेक्टेड नहीं है, वो भी रद्द नहीं हो रहे। तो आप देखें, ये रहमत नहीं है बहुत बड़ी? यानी कि उसके बाद अगर आप छोड़ दें कि वो लोग जो अहले हक नहीं है, तो फिर इंसानियत में कौन बच जाते हैं? तीन किस्म के लोग बच जाते हैं, लालची, बुजदिल या जो बिल्कुल ही बदबख्त हैं। ठीक है, यानी कि जिनके नफ्स में खबासत है। फिर तीन किस्म के लोग बच जाते हैं। जब आप ट्रुथफुल और राइटियस को की कैटेगरी को हटा दें, तो फिर ये तीन किस्म के लोग बचते हैं कि यानी वो लोग के जो डर के मारे कुछ करते हैं, खौफ से करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो लालच में करते हैं, और कुछ वो हैं कि जो इतने बदबख्त हैं जो कभी सीधे होने ही नहीं है जिन्होंने। सही, तो वो जो फोर्थ कैटेगरी है, जो फोर्थ कैटेगरी है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, यानी वो तो नाकाबिल इलाज है। सही है ना, यानी कि जिसने इस बात की ठान ली है कि मुझे सही रास्ते पर आना ही नहीं है, मुझे हमेशा जो भी करना है वो गलती करना है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी देखें, खुदा ने जो लालच वाला है और जो बुजदिल है, दोनों उनको भी मिला लिया है, उनको भी फोल्ड में ले लिया है कि मत जाओ अजाब में। ठीक है, तो रहमत खुदा हमेशा इंसानों के लिए किस तरीके से बिहेव कर रही है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट यह है कि लोग, इंसान, बंदगान खुदा अजाब का शिकार ना हो। ठीक है, यानी कि ये जो हमें तासुर हमारे पास पैदा होता है ना कि ये कि जो निज़ाम है वो इस तरीके से है, या अजाब का कि जनाब लोगों को बस के ज़रा से कुछ किया नहीं आपने और आप मुसीबत में पड़ गए, तो पूरा सिस्टम जो गियर्ड अप है वो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही आप जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि खुदा तुम्हारी तौबा का इंतज़ार कर में बैठा है, खुदा तुम्हारे इंतज़ार में कि तुम कब रियलाइज़ करते हो अपने नफ्स पर जुल्म करने को, तुम कब उसकी तरफ रुजू करते हो, कब पलटते हो। क्योंकि खुदा की नीयत ये नहीं है कि तुम हलाक हो जाओ, उसका इरादा ये नहीं है कि उसके बंदे मुसीबत में पड़ें। वला यश्का बिनिअमतिका शकीयुहुम इल्ला अन तूलिल इज़ार इलैह, और कि कोई शख्स जो है कि जो अल्लाह की नेमतों में शकावत का मुजाहरा करता है, वो अल्टीमेटली शकी ना बने मगर एक बहुत ज़्यादा मुद्दत उसको मिले कि ताकि उसके पास कोई उज़र या बहाना ना रह जाए। ठीक है, इस जुमले को मैं फिर दोहराता हूँ कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतों का मिसयूज़, अल्लाह की नेमतों को गलत रस्तों में इस्तेमाल करना, ये कौन शख्स है? ये वो है कि जो अल्लाह की नेमतों के ज़रिए से सआदत के बजाय शकावत खरीद रहा है, बदबख्ती खरीद रहा है, लेकिन उसे भी खुदा अल्टीमेटली बदबख्तों में शामिल नहीं करता, जब तक कि उसको एक बहुत तूलानी मुद्दत या बहुत लंबा पीरियड प्रोवाइड नहीं कर देता कि फिर उज्र ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। यानी आप अगर किसी को उसकी गलती या बुराई से बाहर आने के लिए टाइम देते हैं, कितना देते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, सही। यानी कि जैसे अगर कोई हमारे पास या अगर कोई हमारे इदारे में है या किसी से हमारी डीलिंग है और वो हमें ये नज़र आ रहा है कि जी मेरे साथ, यानी मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूँ और वो मेरे साथ मुसलसल बुराई पर बुराई पर बुराई किए चला जा रहा है, मेरी हर नेकी का जवाब बुराई से दे रहा है, आप कितनी मोहलत देंगे उसको? बिफोर बैनिशिंग हिम या बिफोर पनिशिंग हिम फाइनली कितनी मोहलत देंगे? हम तो 1 महीना भी नहीं रुक पाएंगे। सही, खुदा सालों की मोहलत, तवील मोहलत मोहलत देता है कि ताकि उसके पास कोई उज़र ना रह जाए, ठीक है, यानी या उसके उज़र को तमाम कर दे खुदा, फिर उसको शकी और बदबख्त, यानी अमल में शकावत होना एक चीज़ है लेकिन इंसान की ज़ात को का शकी हो जाना, और ज़ात का शकी होने का मतलब क्या है, यानी आखिरत में, क्योंकि आखिरत में जो जिन चीज़ों को आप हकीकतन देखेंगे वो सिफात हैं, तो अमल की शकावत जो है वो शकावत वाली सिफत में बदल जाए, ये खुदा इतनी जल्दी नहीं करता। ये बात समझ में आई आपको? यानी अमल की जो खराबी है, अमल की खराबी, ठीक है, अमल की खराबी, अमाल की खराबी, उस अमल की खराबी को खुदा तवील मोहलत देता है, यानी उज्र का मौका देता है कि ठीक है 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर तुम आ गए मेरे पास के, देखें मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी ये गलती थी, मैं यूं था, मैं बहका हुआ था, मुझे किसी ने, ये उज़र है ना, खुदा उस उज़र को कबूल कर लेगा। यानी उज़र की मोहलत दे रहा है। उज़र की मोहलत आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? उज़र की मोहलत समझ रहे हैं, यानी कि एक तवील अरसे तक खराबी की, बुराई की, बुरे आमाल किए, लेकिन उसके बाद जाके हम खुदा के सामने अपना उज़र पेश कर रहे हैं कि मैं बहका हुआ था, मैंने समझा नहीं था, ठीक है, हो सकता है झूठी बोल रहे हो, खुदा उस उज़र को कबूल कर लेगा। यानी इतना तवील अरसा वो प्रोवाइड करता है किस बात के लिए कि अगर तुम अपने खराबी का उज़र लेकर आ जाओ और अपने रस्तों को सही कर लो, हम फिर भी तुमको कबूल कर लेंगे। यानी कि जब खुदा की तरफ से स्टैम्प किसी पर लग जाए कि इस ये शकी है, यानी इसमें सिफते शकावत पाई जाती है, ये बदबख्त है अपनी ज़ात में, ये जल्दी नहीं होता, ठीक है। यानी जैसे वही मिसाल जो हम बार बार बयान करते हैं हुर की, कि जब यानी हुर ने इमाम हुसैन को रोक लिया वहाँ पर और जिसकी वजह से वो सारा कुछ हो गया, लेकिन देखें कि उसने जब अपना उज़र को के लेकर वो इमाम हुसैन के पास है कबूल कर लिया, ठीक है, उस पर शकावत की स्टैंप नहीं लगाई।
एक दो एक्सेप्शन आपने एक दफा पहले भी साबित किए, दो ऐसे गुनाह हैं जो कि वो काबिले कबूल नहीं होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। एक कत्ल किसी ऐसे शख्स का जिसका कोई गुनाह नहीं हो, और दूसरा किसी का किसी की इज्जत उसको उछालना। तो ये एक्सेप्शन
देखिए, इसमें तौबा हर जगह है, तौबा हर जगह है। यानी कि जो सबसे ख़तरनाक गुनाह है वो तो ज़ाहिर शिर्क है, यानी ये भी है, शिर्क भी है। यानी कि अगर बंदों के हवाले से जो ये, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट कराया, और ये गुनाह इतने ख़तरनाक क्यों हैं, इसलिए कि इसका जबरान जो है ना वो कंपनसेशन पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और शिर्क का जो गुनाह है, लेकिन स्टिल तौबा की गुंजाइश है। सही, यानी जैसे एक उसका वाक़या है, एक जो बंदा बाद में काफ़ी वो भी हुआ, यानी कि उसका एक एलिवेटेड स्टेटस भी हासिल किया उसने, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का वाक़या बयान किया जाता है काफ़ी पहले। यानी वो एक डाकू था और लोगों का सामान लूटता था और वो सब करता था, और मतलब काफ़ी एक जालिम व जाबिर किस्म का वो शख्स था, डाकू, और वो टायरेंट टाइप का भी था। वो एक रात को अपने वो किसी के घर की दीवार फलांग रहा था, ठीक है, और मतलब वो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता बारह, और वो उस दीवार पे था कि उसको पड़ोस से एक तिलावत की आवाज़ आई, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ कुलूबुहुम, के क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त आ गया कि उनके कुलूब ज़िक्र इलाही के लिए नरम हो जाएं, खशियत पैदा कर लें। तो उसने वहीं पर से आवाज़ लगाई कि या अल्लाह वो वक्त आ गया है। लेकिन स्टोरी डिड नॉट एंड हियर, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गई कि जी उसने कहा मैंने तौबा कर ली और मैं वो हो गया। उसने उन तमाम लोगों को ढूंढा जिनका माल लूटा था। इस अरसे में उसे 20 साल लगे उन लोगों को तलाश करने में कि जिनका माल लूटा था, और उनको लौटाने में वो माल, या उसको कंपनसेट करने में, या उनसे माफ़ी मांगने में, ठीक है। और उन 20 सालों के बाद उसके जवान बेटे की मौत उसकी नज़रों के सामने हो गई। तो उसने कहा कि अब मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया। ये आसान नहीं है, वही जो बात मैंने की ना, किसी का हक ले लेना, किसी की इज्जत खराब कर देना, ये कोई आसान मामला नहीं है। लेकिन स्टिल तौबा की गुंजाइश मौजूद होती है अगर इंसान बिल्कुल सच्चे दिल से इकदाम करे और तौबा को रियलाइज करे कि हाँ मैंने ये गलती कर ली है, मैं कर बैठा हूँ, लेकिन या अल्लाह अब मैं इसको वो करना चाहता हूँ और इसका जबरान करना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली। और वो जो बात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है ना, इस्तग़फ़ार, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, वो जो 6 पॉइंट्स आपने बताए जो नहजुल बलागा में कलिमात क़िसार में 417 है, कि जो एक शख्स पढ़े जा रहा था अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो आपने फरमाया तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, तुझे पता भी है अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते किसको है। और यही बात आपने बयान फरमाई कि जो जिसका हक़ ज़ाया हुआ है उसको लौटाओ, और वो जो गुनाह कबीरा वाली बात है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कत्ल कर दिया ना, उसको कैसे लौटाओगे, किसी की इज्जत ख़राब कर दी, या यानी जो एक गुनाहाने कबीरा के अंदर जो हैं कि जैसे एक नाजायज़ एक औलाद एक इंसान की पैदाइश का सबब बन गए फेले हराम करके, नऊज़ु बिल्ला। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, यानी वो इंसान जो हलाल ज़्यादा नहीं होता उसका बाई बर्थ जो उसमें डिफेक्ट होता है ना, कि उसकी फितरत में जो तौहीद है ना उस पर पर्दे पड़ जाते हैं, ये बाई बर्थ डिफेक्ट होता है उसके अंदर, कैसे कैसे उसको सही करोगे। यानी तुमने एक इंसान को जहन्नम के रास्ते पर डाल दिया, तो ये मामूली खेल नहीं है सारे, ठीक है ना। यानी वही जो मुझे इमाम खुमैनी का भी एक जुमला याद आता है उनकी वसीयत नामे का एंड में, कि जो उन्होंने कहा था कि सिरात मुस्तकीम इंसानियत दुश्वार है, कोशिश करो कि गुनाह सरजद ना हो। यानी अगर गुनाह आ गए ना तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम इंसानियत की सिरात से हट जाओगे, फिर बिल्कुल फिर किसी न किसी हैवान के साथ ही जाओगे, ठीक है। तो ये मसाइल हैं ख़तरनाक, बिल्कुल डेफिनेटली ख़तरनाक है। और यानी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि बिल्कुल, यानी कोई भी गुनाह कबीरा वाली बात तो बहुत ही ख़तरनाक है ना। लेकिन आजकल के दौर में जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वो ये कि गुनाह कबीरा लोगों की नज़रों में आसान हो गए हैं, गुनाहाने कबीरा जो है ना उनके हवाले से वो शर्म व हया और वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, या बल्कि हो चुकी हैं।
बात से बात आई है, जो कहते हैं कि मैं जो इमामत पे नहीं मानता वो हलाल ज़्यादा नहीं होता है, सब ये मतलब क्या है, ये ठीक ठीक बात है कि इसमें कोई पॉइंट है?
देखिए यहाँ पर अब जाहिर है मैं इस पर बाकायदा कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, मैंने इस किस्म की जो चीज़ होती है उस पर बाकायदा कमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है ना, वो ये समझ में आता है कि ज़्यादातर इस किस्म के जुमले जो हैं वो दुश्मनी और बोझ के रेफरेंस में ज़्यादा हैं। यानी अगर आप कुरान को भी देखेंगे ना, कुरान की के अंदर भी गहराई से मुतालिया करेंगे, तो जिन लोगों पर अजाब की या दायमी अजाब या सख्त अजाब की बात की गई है ना, वो लोग हैं जो दीन की दुश्मनी का रास्ता अख्तियार करते हैं। ठीक है, यानी जैसे बाकी लोग जो गुनाहगार हैं, यानी जैसे जिस किस्म के लोगों की बात यहाँ पर हो रही है, उनके लिए बहुत गुंजाइश रखी गई है, उनके लिए चीज़ें हैं कि मतलब खुदा किसी ना किसी उस पर पूरा निज़ाम है, खुदा की पूरी एफर्ट होती है कि माफ़ हो जाएं लोग, कोई बहाना मिल जाए, या ये कि भाई कि जो हमने जैसे आपको बताया था कि जहन्नम जो है वो आखिरत का हॉस्पिटल है, या ना उस हॉस्पिटल में चले जाएँ, रिकवर हो जाएँ, ट्रीटमेंट हो जाए, हो हुआ के किसी तरीके से। तो वो भी जो बात आप कह रहे हैं ना कि ये ना, जैसे इसी में मैं आपको एक बात कहूँ कि इमाम की एक रिवायत है। अब जाहिर है रिवायतों में हमेशा यस नो का फैक्टर होता है कि कितनी दुरुस्त है या किस हद तक दुरुस्त है, कि उसमें आपने ये फरमाया कि फिरौन ने हजरत मूसा से हर किस्म की हील हुज्जत कर ली, कत्ल नहीं किया मूसा को, मूसा के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। ठीक है, यानी जब बहस हो रही है दरबार में, ये मुकालमे वो मुकालमे, लेकिन हालांकि मूसा क्या थे, उनके जाहिरान तो कुछ भी नहीं थे, मतलब एक आम आदमी थे, और फिरौन के लिए तो लोगों को कत्ल करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कत्ल कर जैसे जादूगरों को कैसे कत्ल करा दिया था उसने, लेकिन उसने मूसा के कत्ल का ऑर्डर नहीं दिया था। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जी के इमाम अलैहिस्सलाम की उस रिवायत में जुमला मौजूद है कि मासूम को, यानी नबी या वसी नबी को, वही जो आपने जुमला इस्तेमाल किया ना,
जनाजा नहीं है वो कत्ल कर दिया।
हाँ
मतलब जनाब मूसा को तो ऑर्डर पैदा होने से पहले ही दे दिया था, कोई भी बच्चा हो तो
नहीं,
उसको
लेकिन हजरत मूसा जब सामने आए,
उनके
हजरत
ट्रीटमेंट के
मूसा
दौरान
जब सामने आए, हजरत मूसा जब मौजूद थे या
उसे नहीं
उसके
दिया,
मुकाबले में आ गए, नहीं,
उसे नहीं
वो
दिया।
तो एक जनरल हुक्म था, हजरत मूसा का थोड़ी पता था उसको, वो तो एक जनरल हुक्म था कि बनी इसराइल के लोगों में कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दो। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बतौर पैगंबर उसके सामने आए हैं, तो उसने हजरत मूसा से हर किस्म की बहस कर ली है, आर्ग्यूमेंट कर लिया है, लेकिन उनके कत्ल का हुक्म नहीं दिया, या दे ही नहीं सका, दे ही नहीं सका, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी इतनी दुनिया की ताकत और कुव्वत को लेकर। तो बहरहाल अब ये इस किस्म की चीज़ें हैं, अब इस पर हम कोई एग्जैक्ट फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए जो बात ज़्यादा अहम है वो अपनी आखिरत और आकिबत बचाने वाली बात ज़्यादा अहम है। ठीक, तो यानी कि जैसे मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि गुनाह ने कबीरा वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत डेंजरस है। यानी गुनाह ने कबीरा को किसको आप कहेंगे कि जिसका कंपनसेशन पॉसिबल नहीं होता, यानी वो गुनाह जिनके नतीजे में इतनी बड़ी खराबी जनरेट हो जाती है कि जिसको आप ओवरटर्न नहीं कर पाते, या आपके पास उसके वसाइल, यानी कि फिर वो कुदरत खुदा चाहिए उसके लिए, फिर उसकी कुदरत चाहिए जो हर शय का मालिक है कि वो फेवर करे और उससे वो हो। यानी कि इसमें मैं आपको कई और भी सुना सकता हूँ, पहले सुनाए भी थे, लेकिन वो हम अपनी बात से हट जाएंगे, अपने टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक उसूल है। तो इस वजह से और इसी वजह से आप देखें कि यानी यहाँ पर बात से बात निकल आई है ना, तो मैं आपको एक और कानून इस्लामी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि देखें, इस्लाम ने जो भी कानून आपको दिया है ना, स्पेशली हलाल और हराम का, आप गौर करें कि उनमें से कोई कानून भी सब्जेक्टिव नहीं है, हर कानून ऑब्जेक्टिव है। इस बात पर नोट, बात को नोट किया आपने? यानी मैं आपको उसकी मिसाल दूं, उसकी मिसाल ये है कि इस्लाम का कानून ये नहीं है कि जितनी शराब पीने के बाद तुम्हें नशा हो जाए वहां से शराब हराम है। अगर کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو شراب سے نشہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے وہ پی لے، یہ قانون نہیں ہے اسلام کا. صحیح آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اسی طریقے سے ہر چیز میں کہ اگر مثال کے طور پر اگر یعنی اس کا دوسرا ہے کہ اگر مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنے سے تمہاری شہوت حرکت میں نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں. ہر جگہ قانون کیا ہے اسپیشلی حرام میں آبجیکٹیو ہے، یعنی دیر از اے رول آؤٹ دیر جو آپ کی پسند ناپسند آپ کے حالات احوال کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے کہ ایک گھونٹ پینے سے نشہ آتا ہے نہیں آتا، آپ ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتے، بلکہ آپ اس دس افغان پہ بھی نہ بیٹھیں جہاں پہ شراب سرو کی جا رہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر سبجیکٹو یعنی لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا.
رسول سے پہلے شراب جو تھی وہ رسول کے ٹائم میں یہ وہ آیا کہ شراب کو جو ہے وہ اس سے پہلے تو لوگ کنزیوم کرتے
ہیں، مطلب جب دین آیا دین نے اس کو حرام قرار دیا.
لیکن اب اگر اس کو گوئنگ مطلب بیک ٹو جیسے وہ کرتے ہیں کہ اسلام تو جو ہے وہ ڈے ون سے آیا، چاہے وہ جناب آدم کے ٹائم سے اسلام، وہ بات الگ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اسلام وہ کیا کہ اسلام جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، ایک ٹیگ میں نہیں اس کو قید کر سکتے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر، اور وہ ڈے ون سے آیا تو اللہ کا میسج ہمیشہ سے اس دنیا میں تھا، جیسے دنیا خلق ہوئی وہ بات الگ ہے، الگ الگ ٹائم میں الگ الگ میسیجز آئے اور رسول پاک جو تھے وہ لاسٹ وہ تھے. لیکن جیسے کہ تو یہ مجھے آپ سے کنفرم بھی کرنا تھا، میں نے کسی اہل سنت سے سنا تھا کہ جس کے میں نے کبھی پڑھا نہیں لیکن سنی سنائی بات ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا رسول کے دوران رسول کے ٹائم میں جب شراب جو تھی وہ مطلب اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اور ایک دن جو ہے وہ رسول نے کہا کہ آج ساری شراب بہا دی.
ہاں یعنی کہ بالکل بعثت کے پہلے دن سے چیزیں ہر چیز حرام نہیں ہو گئی، مطلب مختصراً یہ کہ جتنے بھی محرمات آئے ہیں وہ گریجولی آئے ہیں، بعثت کے پہلے دن سے حرام نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر یعنی ایسے جتنے بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے حرام ہیں نا کہ وہ یا واجبات ہیں کہ وہ ڈے ون سے یعنی رسول خدا نے جس دن سے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا اس دن سے تمام واجبات اور محرمات نہیں آئے، رفتہ رفتہ آئے، ٹھیک ہے اور وہ اپنی اس مصلحت کے مطابق آئے. کیونکہ لوگ جس طریقے سے ایک پوری عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھرے ہوئے ہوتے ہیں ان سب تمام چیزوں میں، تو آپ کو اس کے مطابق ایکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو ایک یہاں پر بھی ہم کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ جو آپ سے ہی میرا خیال ہے کہ ہماری ایک بہت بات پہلے ہوئی تھی غلامی اور کنیزی کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے ایک بات یہ کہی تھی نا کہ اگر آپ اس انسانی یا ایک امپرفیکٹ ڈومین میں دیکھتے ہیں جس میں انسان ابھی زندہ ہے اس کے لحاظ سے یہ قانون جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی یہ قانون بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. ورنہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو آج کل کے جو معاشرے ہیں جنہوں نے آزادی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کیا حال ہے، ٹھیک ہے اگر اسی کی جگہ وہ ہوتا، اگر اسی کی جگہ وہ چیز ہوتی کہ لوگ چلو کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے یا کسی کے سرونٹ ہوتے یا کسی کے ساتھ موجود ہوتے اور ان کے سر پہ کیئررز ہوتے ان کے آقا کے نام پر، تو معاشرہ بہتر حالت میں ہوتا جو آج تباہی مچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا نے جو دین ہم کو دیا ہے، یہ جو قانون دیا ہے نا، یہ ایبسولیوٹلی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ ریلیٹیولی پرفیکٹ ہے، ٹھیک. اور ایبسولیوٹ پرفیکشن کا قانون بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو کمزوریوں کے ساتھ، نقائص کے ساتھ، خلق الانسان ضعیفہ، خلق الانسان عجولہ من عجل، انسان کے اندر ڈیفیکٹس ہیں، کمزوریاں ہیں، بائی برتھ ضعیف ہے، کمزور ہے، جلد باز ہے، ٹھیک ہے اس میں ایک لالچ ہے، حرص ہے، نفس امارتم بسو ہے، وہاں سے اس کو اٹھا کے لانا ہے نا. तो जी तो इसलिए जो है ना कि जितने भी कवानीन आए हैं उनको आप एब्सोल्यूटली परफेक्ट कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें कि आप हर चीज़ को आइडियली परफेक्शन के साथ बयान करते हैं, यूँ होना चाहिए, यूँ होना, जैसे हमारे हम लोगों की गलती होती है क्योंकि हम हर एक की फितरतों को नहीं देख रहे होते, तो हम फौरन ना आइडियलिज्म पे चले जाते हैं या बिल्कुल ही बहुत आला मेयार पे जाके, तो कोई भी नहीं मान पाता उसको, कोई भी अमल नहीं कर पाता, चल ही नहीं सकते लोग उसके साथ। तो इस्लाम भी इसी तरीके से ना ग्रेजुअली वो चीज़ें बिल्ड हुई हैं, ठीक है। वो आपकी बात एक अपनी जगह पर वैलिड उसको माना जा सकता है, यानी कि भाई ठीक है, अगर एक चीज़ जो है वो नफ्स पे आपके ख़राब असर डाल रही है या आपके नफ्स के लिए ख़राब है, तो आपने उसको 5 साल के लिए क्यों छोड़ दिया? सही है। अब एक ये सवाल यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि उसको क्यों छोड़ दिया, लेकिन बात वहाँ पर वही आती है कि जब खुद रसूल मौजूद हैं और रसूल खुद हुक्म खुदा से तमाम चीज़ों की टेक केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब वहाँ पर किस तरीके से रसूल ने कैसे मैनेज किया कि मतलब उन तमाम असरात को मिनिमाइज किया या डिमिनिश किया या किस तरीके से किया? इन्हें जैसे वही बात होती है ना कि एक डॉक्टर है, वो ये नहीं होता कि आप जाएं तो फौरन ही ऑपरेशन, चलो भाई चीर फाड़ के रख दो, वो चीज़ों को लेके चलता है, उसको सेहतमंद बनाने की कोशिश करता है, उस पर रफ्तार रफ्तार चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, दवाएं, वो सब कुछ। तो दीन का निज़ाम भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है, लेकिन वंस इट इज़ इवॉल्व, एक दफ़ा जब चीज़ें बन गई, दीन के कवानीन आ गए, उसूल आ गए, क्योंकि वो लोग तो कुफर से उठ के आ रहे थे ना, आप इस बात को भी तो सोचें ना, यानी हमारी तरह वो जो रसूल के साथ लोग थे वो हमारी तरह कोई बाय बर्थ मुस्लिम थोड़ी थे, वो तो उस इतने खराब और कुफर और शिर्क और बुतपरस्ती के माहौल से उठ के आ रहे थे, और चारों तरफ से उसकी यलगार थी
पहले दिन
उस
बता कर दिया
उसी उसी माहौल से ना, तो वो फिर वहाँ पर उसी किस्म की ग्रूमिंग और उसकी ज़रूरत थी कि अगर आप इस पे गौर करेंगे ना तो आपको फिर वो पूरी हिकमत नज़र आएगी। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ होती है कि हम चीज़ों को आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क में देखते हैं,
नहीं मैं हैदर भाई, मगर एक
ये
पॉइंट है इसमें
नहीं।
जो श्याम भाई का, जो हमें भी वो दिमाग में चल रहा था कि पहले भी रसूल आए थे और जैसे ईसा मसीह भी मनाते रहते थे,
नहीं तो किसी मजहब में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है, बिल्कुल 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 नहीं, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है।
यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि फिर उसमें खुदा की रहमानियत भी इन एक्शन आती है कि वो जो बुरे असरात हैं खुदा के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है।
हाँ वो नहीं है, यानी कि बात वही मैं कर रहा हूँ जी, ठीक कह रहे हैं कि असल में बनाना तो इंसान को है ना, यानी कि जैसे आप अपने बच्चे के साथ जिस तरीके से आप डील करते हैं, क्या वही आप हैं? जब आप बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, या बच्चे के साथ बच्चे बने हुए होते हैं, तो वो आप नहीं है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं होती, वो आप इसलिए करते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए करते हैं ना। तो हम इस बात को भूल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये दीन जो है ना ये बिल्कुल एक एब्सोल्यूट परफेक्शन राइट फ्रॉम, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जब तक इंसान उस मेयार पे नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक उनके लिए परफेक्ट कवानीन नहीं बन सकते, कोई अकल नहीं है इसमें, ठीक है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते। यानी आप अगर मलकूती कवानीन जो हैं वो जमीन पर ले आए, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? यानी हमें इतना कुछ बताया गया कि भाई अपनी इबादत में इखलास पैदा करो, कर पाते हैं हम? हमें जो छोटी मोटी चीज़ें जो जो इनफैक्ट मलकूती कवानीन है ना, यानी कि अगर आलम मलकूत में या फरिश्तों की दुनिया में अगर मलाइका खुदा की इबादत करते हैं तो उनके दिमाग नहीं ऐसे घूम रहे होते उधर उधर चीज़ों पर, सही है। वहाँ जो भी मखलूक है उसकी इबादत खालिस है, हमको भी कहा गया करो, कर पाते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में 30-40 साल गुजार दिए हमने नमाज पढ़ के, एक नमाज नहीं पढ़ सके उस कदम की, उस मेयार की, ठीक। तो अब खुदा ग्रिप कर ले हमें, अगर खुदा वो सारे कवानीन बना दे, उन सबको वाजिबात कर दे, انہیں جس کو امام خمینی نے بھی آداب و صلات میں لکھا ہے کہ اگر خدا ان چیزوں کو اس طریقے سے لاگو کر دے, ایک نماز کسی کی مقبول نہیں ہے, ایک نماز مقبول نہیں ہے. کرنا چاہیے خدا کو ایسا پھر کہ پرفیکٹ لیجسلیشن کرے اکارڈنگ ٹو پرفیکشن اور پھر سب کو لائن حاضر کرے, تو یہ ممکن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یہ بصیرت ہونا ضروری ہے کہ اسی طریقے سے, یعنی کہ نرچرنگ ہے, نورشمنٹ ہے, ربوبیت ہے, کہ وہ جو ایک امپرفیکٹ اسٹیٹ سے آپ انسانوں کے نفوس کو لیتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, بلڈ کرتے ہیں, ان میں الاؤنس دیتے ہیں, ٹالرنس رکھتے ہیں, یہ طریقہ ہے نا. یہ عقلی طریقہ ہے یا نہیں؟ درست. تو پھر آپ فرماتے ہیں انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک, اور تو وہ ہے کہ جس نے کھول دیا ہے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ. کس بات کا دروازہ؟ اپنی معافی کا دروازہ. معافی کس کو کہتے ہیں؟ عف کس کو کہتے ہیں؟ عف کہتے ہیں کہ تم اس لائق ہو کہ تم کو سزا دی جائے, لیکن ہم تم کو درگزر کرتے ہیں. یہ معافی ہے ان شارٹ. ٹھیک ہے, یہ مغفرت نہیں ہے. عفو وہ مغفرت الگ چیز ہے, یعنی معافی کہ تمہارے گناہوں سے ہم تمہاری خرابیوں سے درگزر کرتے ہیں. اور بس سمعی تحت توبہ, اور اس معافی کے دروازے کا تو نے کیا نام رکھا؟ توبہ. وجعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک, اور اپنی وحی میں جو وحی تو نے ہمارے اوپر نازل کی اس میں اس پر ایک دلیل بھی قائم کی, دلیل بھی رکھی. لئلا یضل عنہ, تاکہ کوئی توبہ کے بارے میں گمراہ نہ رہے, اس بارے میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. فقلت تبارک اسمک توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ نصوح. نصوح اب یہ پھر کیا ہے؟ نصوح یعنی خالص توبہ. اللہ کی طرف توبہ کرو, توبۃ نصوح یعنی خالص توبہ. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم خالص توبہ کرو گے اللہ کی طرف تو امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو چھپا دے گا, محو کر دے گا. ٹھیک. اب اگر میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بہت بڑی رحمت ہے, یعنی کیوں بہت بڑی رحمت ہے؟ اگر آپ اس نظام زندگی کو سمجھتے ہیں تو آپ اس آفر کی جو ہے نا صحیح معنوں میں قدر کریں گے. وہ کیا کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ زندگی کے نظام میں ایک خرابی پیدا کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے نفس میں ایک زہریلا اثر قائم ہوتا ہے. تو معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم کسی کٹہرے میں کھڑا اور آپ نے کہا چلے جاؤ. معافی اور مغفرت کا مطلب ہے کہ ہم تمہاری طرف سے ان اثرات کو بھی کور کریں گے جو تم نے خرابیاں پیدا کی ہیں, اور تمہارے نفس کے اندر جو زہر پیدا ہو گیا ہے اس کا بھی علاج کریں گے. تو یہ بہت بڑی آفر ہے. ٹھیک ہے, یہ یوں ہی نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا یا جاؤ چلے جاؤ کچھ نہیں کرتے. ٹھیک, تو یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اچھا, پھر اس کے بعد میں ایک دو فقرے بھی چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک, اور خدا نے ہمارے ساتھ کیسے ڈیل کی؟ خدا نے ہمارے ساتھ, یعنی خود اب یہ ساری آپ اس کو کس اس میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ ڈیلنگ کیسے کی ہے, ہمارے ساتھ کس طریقے کے رویے رکھے. صحیح, تو اگر ہم غلطی کریں تو ہمیں کہاں آنا چاہیے؟ باب توبہ پہ جانا چاہیے فوراً. انابہ یعنی فوراً پلٹیں اللہ کی طرف, معافی اور مغفرت طلب کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی یہ خدا نے ہمیں آفر دی ہے کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیے کم بیک ٹو می، تو میں تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، تمہاری خرابیوں کو چھپا دوں گا، تمہاری جو تم نے فتنہ گری کی ہے اس کی اصلاح کر دوں گا. اس کے بعد دیکھیں ایک اور جو آپ فرماتے ہیں خدا نے ہم سے کیسے ڈیل کیا، کہ جب ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے خدا نے، تو ہمیشہ جو نرخ ہے، یعنی جو نرخ کا مطلب ہے کہ جب ڈیل آپ کرتے ہیں تو ایک ادھر سے کچھ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیلنگ میں گیو اینڈ ٹیک. تو خدا نے ہمیشہ گیو میں زیادہ بھاؤ اپنے اوپر رکھا ہے ہمیشہ، صحیح. یعنی اگر تم ترید و ربحہم فی متاجرتہم لک، کہ جو ان کے ساتھ تو نے تجارت کی ہے تو تیری نیت کیا ہے کہ میکسیمم فائدہ تو اپنے بندوں کو دے اس تجارت میں، وہ تجارت ایکول نہیں رکھی ہے، اس تجارت کو برابر نہیں رکھا ہے. وَفَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ، کہ جب ہم مطلب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو کامیاب ہو کر حاضر ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنا سرمایہ لیں. تو نے کیا فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو حسنہ کو لے کر آتا ہے، نیکی اور اچھائی کو لے کر آتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس جیسے 10 ہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا، اور جو برائی لے کر آتا ہے اس کی جزا نہیں ہے مگر ایک، اسی کے مثل، اسی کے برابر، یعنی 1:1 برائی کا بدلہ ہے، 1:10 نیکی کا بدلہ ہے، اچھائی کا بدلہ ہے. وَقُلْتَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں اپنے مال انفاق کرتے ہیں، کمثل حبتن، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، حبتن دانہ، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ ہے، اس دانے میں سے 100 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے میں 7 نہیں، اس میں سے 7 خوشے شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے، تو کتنا ملٹیپلائی ہو گیا، 700، ٹھیک ہے، 700. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ لمٹ نہیں ہے بلکہ جس کے لیے خدا چاہتا ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے، صحیح. اور تو نے فرمایا، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، ٹھیک ہے. اور تو نے کیا فرمایا کہ اور وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی، صحیح ہے. یعنی خدا کیا ہے، تمہارا مقروض ہے، جو نیک عمل تم خدا کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو خدا اس میں تمہارا مقروض ہے. اور مقروض ہونے میں، اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا بات ہے، یعنی کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ امام علیہ السلام نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں یہاں پہ، تو اس میں سے دوسرا ریوارڈ پہلے سے اوپر، پہلا یعنی 10 times، دوسرا اس کی ملٹیپلیکیشن انٹو 700 times، ٹھیک. اور تیسرے میں کہا کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو خدا اس کے لیے کثرت سے اس میں اضافہ کرتا ہے. یہ کیسے سب سے زیادہ ہے؟ باغ بھی ہے اس کے بعد، لیکن یہ الگ ہے، قرض حسنہ والی
اس کو گرو کرتا ہے.
قرض میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟
اگر کوئی چیز کی آپ کو ضرورت ہو، حاجت پیش آتی ہو، تو آپ جا کے پوچھتے ہیں کسی سے، تو
ضرورت مند والا کام اس کا پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے वो तो है जी 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 जी
के निजाम में जो काम वो करता है, अच्छाई क्रिएट करता है, उसमें थोड़ा सा आप कर रहे हैं तो बेसिकली उससे और आगे अच्छा होगा, मल्टीप्लाई। तो कर्ज एक तरह से उसको दे रहे हैं कि जो अच्छाई वो ऑटोमेटिकली फिर बाद में वापस आएगी, पूरे निजाम को जब ठीक कर देगी। तो
मुझे लगता है कि ऐसे एक एक चीज है, मतलब एक अलग एंगल भी आता है दिमाग में, एक रिलेशनशिप हमेशा के लिए बनी रहती है, क्योंकि जब तक कर्जदार होगा और मकरूज होगा तो दोनों का रिलेशनशिप जो है वो तो तब तक अदा नहीं होगा जब तक वो फाइनल उस पर ना पहुंच जाए।
अच्छी बात। देखिए इसमें कर्ज के अंदर जो खास बात आती है ना, कि जब कोई किसी का मकरूज होता है तो वो कर्ज लेने की बिना पर उसका एहसान मंद हो जाता है। कर्ज देने वाला मोहसिन है, एहसान कर रहा है, और जो कर्ज ले रहा है वो एहसान मंद है। तो यानी खुदा जब रिलेशनशिप कह रहा है या कर्ज की बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यानी हम तुम्हारे एहसान मंद हैं, हम तुम्हारे मशकूर हैं, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमको, भाई जो कर्ज लेता है उसका आप शुक्रिया अदा करते हैं ना, जो कर्ज देता है। तो यानी हम तुम्हारे मशकूर हैं, हम तुम्हारे एहसान मंद हैं। अच्छा, अब जब कोई किसी का एहसान मंद हो और उस एहसान का बदला उतारना चाहे, तो क्या उस बदले की कोई लिमिट होती है या हो सकती है? कोई लिमिट आप अप्लाई नहीं करते, एहसान मंदी नहीं देखें। कर्ज अदा करने को आप कहेंगे वो, लेकिन एहसान मंद होने के रिवॉर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब खुदा ये बात कह रहा है कि हम तुम्हारे मकरूज हो गए हैं या तुमसे हमने कर्जा ले लिया है, तो अब क्या मतलब हुआ इसका कि अब जब हम उसको रिटर्न करेंगे या जब हम करेंगे तो हम तुम्हारे शुक्रिये और एहसान मंदी के साथ रिटर्न करेंगे, तो अब तो उसका कोई लिमिट ही बाकी नहीं बची उस पर। फिर भी लिमिटेड है। लेकिन जब खुदा कह रहा है कि हम तुम्हारे मकरूज हो गए, हम तुम्हारे मशकूर हो गए, तो अब जब आप किसी को उसका रिटर्न देंगे, शुक्रगुजार होकर जब आप किसी को इनाम देंगे, तो कोई लिमिट नहीं है ना। यानी जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई एक बहुत दौलतमंद शख्स है तो वो एक महल भी दे सकता है किसी को। अगर एक किसी की कम हैसियत है, वो अपनी हैसियत, तो खुदा की हैसियत क्या है? यानी कि ये वाला जो कर्ज वाली, यानी खुदा ने और कौन सा दरवाजा खोला कि हमसे डील करो तो यानी हमारे साथ अगर तुम डील करोगे तो तुम्हारे जो बेनिफिट्स हैं दे कैन एक्सटेंड अप टू अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि जिसका कोई भी हद था नहीं है, जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है।
चार मिनट से कर रहे हैं वो आपके सेकंड टीयर वाले उस पे फिट होती है ना, तो फर्स्ट टीयर वाला वो उस पे नहीं फिट होते।
क्यों नहीं होते? ये आखिरी बात फर्स्ट वाले पे ही फिट होती है। इनफैक्ट
मतलब जैसे जो लालच
के बिना, नहीं, आखिरी बात जो है ना वो फर्स्ट वाले पर ही फिट होती है
जो लालच के लिए वो ऐसे ही कर रहा
है। हाँ, यानी कि देखें ये जो रिलेशनशिप होती है ना, आप थोड़ा सा देखें इस पे गौर करें कि आप हकीकतन अगर किसी से कहते हैं ना, यानी खुद बाख्तियार होते हुए, अगर आप किसी को भी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, जबकि अथॉरिटी आपके पास है, ओनरशिप आपके पास है, आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तो आप हकीकतन देखें कि ये बरबिनाए मोहब्बत होते हैं। अगर आप इस पे गौर करें, ये टिट फॉर टैट वाली डीलिंग नहीं होती कभी भी, ठीक है, यह देना और लेना, गिव एंड टेक नहीं है। हाँ 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 ठीक, सही, उस वो बात सही है, ठीक। और दूसरी एक चीज और भी है, यानी यहाँ पर देखें एक और बात भी है कि हम मिसाल के तौर पर ये बात तो कहते हैं कि जो हिर्स और खौफ है उससे बालातर होना, लेकिन ये कितने लोगों के लिए पॉसिबल है, हर कब पॉसिबल है? यानी मिसाल के तौर पर कि आप इस चीज़ को गौर करें कि हम जब इस दुनिया की ज़िंदगी में, तो हम इस दुनिया की ज़िंदगी में हर तरफ से मोहताजी और ज़रूरत में फंसे हुए हैं, है या नहीं है? यानी अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरे पास जितने वसाइल हैं सब ले लिए जाएं, कितनी तौहीद बचेगी मेरे पास? मैं बातें तो कर रहा हूँ इस किस्म की, लेकिन अगर मेरे पास से जितने वसाइल हैं सब ले लिए जाएं, तो इसका मतलब है कि मैं बेहाजत नहीं हूँ। मैं जितना भी पुरखलूस इबादत करने की कोशिश करूँ, मैं अपनी अगराज से बेनियाज नहीं हूँ। मुझे निजात चाहिए, नहीं चाहिए? मैं इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो है एक कैद खाने के अंदर फंसा हुआ हूँ, मैं बदन का कैद खाना है, जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन चीज़ें प्रॉब्लम है इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान के लिए, शैतान, खुद दुनिया, मखलूक़ात और दुनिया, यानी जो लाइब लहव है, लाइब लहव वाली दुनिया, मखलूक़ात जिसमें हमारा बदन भी मौजूद है, और शैतान। तो मेरी हाजत है ना, सही, तो इस बात को भी मद्देनज़र हमें रखना पड़ेगा कि वो जो हम जिस बेनियाजी की बात करते हैं ना, वो बेनियाजी तकरीबन इम्पॉसिबल है इस ज़िंदगी में, इसके अंदर। हम उसकी एफर्ट कर सकते हैं, हम उसको चाह सकते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन बहर हाल मैं मोहताज हूँ, बहर हाल मेरे अंदर कमज़ोरी है, मेरे अंदर मसाइल हैं, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो अब आप उसको लालच कहिए या खौफ कहिए, यानी कि हम उस तरीके से खौफ और लालच में मुब्तला नहीं हो सकते जैसे जनरल पब्लिक है कि बस जन्नत की ये नेमत है, ठीक है, हम उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन स्टिल मुझे लालच अपनी निजात की तो है ना, मुझे अपनी निजात की लालच है या नहीं है? बिल्कुल है, उसके बगैर कैसे मेरा काम चलेगा? या मुझे इस बात का खौफ है या नहीं कि इबलीस और दुनिया और खल्क कहीं मुझ पर कब्जा ना कर लें, कहीं मेरे नफ्स को ख़राब ना कर दें, ये खौफ है ना मुझे, बताएं है या नहीं? तो एब्सोल्यूटली बाहर आ जाना उससे, उस जगह से बिल्कुल मुकम्मल तौर से बाहर निकल जाना कि आपके खौफ और लालच वाले मामलात ही आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं। आप सोच रहे हैं ना, यानी इस जगह पर हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। हाँ, हमारे यानी आप यूं समझ लीजिए कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे खौफ और लालच की नौइयतें बेहतर होती चली जाएंगी। यानी कि जो लालच, जो हमारी लालच है या जो हमारा खौफ है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है ना, हम उतने घटिया लेवल की चीज़ों के खौफ और लालच में मुब्तला नहीं है, उससे किसी बेहतर जगह पर आ गए।
फियर कुछ चीज ऐसी होती ही नहीं है, फियर आप अपने आप में क्रिएट करते हैं किसी चीज को ना जानने की वजह से।
नहीं इंसान भाई, ऐसा नहीं है,
कोई भी चीज अगर है, जब तक आप उससे डरेंगे, जब तक आप उसको उसकी डेप्थ में उसके बारे में जानते नहीं है। वंस यू नो, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी है, एक बच्चा इसको जाके छू लेता है, उसको करंट लग जाता है।
नहीं, ये बात देखें, हर जगह ये बात दुरुस्त नहीं है, नहीं ये बात नहीं। नहीं जिशान भाई, ये बात नहीं है। देखें देखें, ये जो फियर है, जो मैंने तीन चीज़ों की बात की कि नेगेटिव असरात इंसान के नफ्स को टेक ओवर कर लें, ये एक जेन्युइन खौफ है या नहीं एक मोमिन के लिए? ठीक है, आपको पता है, आपको शैतान के हरबों का भी पता है, आपको ये बात भी पता है कि दुनिया लाइब लहव है, ठीक है, आपको हर चीज़ पता है, लेकिन ये पता होना इस बात की गारंटी नहीं दे रहा आपको कि ये असरात आप पर नहीं आएंगे। आप इस बात पे गौर करें, ठीक है? क्या चीज़? मैंने ये कहा कि तीन चीज़ों से इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि जो तीन मामलात हैं जो हॉन्टिंग है एक मोमिन के लिए, प्रॉब्लम है, कि जब मोमिन हकीकतन मुत्तकी बन जाता है तो इन तीन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेता है, ठीक है, यानी इन तीन के असरात से आज़ाद हो जाता है। लेकिन वो इबलीस, दुनिया और खल्क, ये तीन प्रॉब्लम,
मतलब उनके डर से निकल जाता
है, डर से नहीं, उनके असर नहीं होता फिर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ ये मसला नॉलेज का नहीं है, ये मसला है कि आप इस बारे में खुदा की मदद के मोहताज हैं या नहीं है, हम हाजतमंद हैं या नहीं, हम लालची हैं या नहीं, हम खौफ में मुब्तला हैं या नहीं यहाँ पे। तो ये नॉलेज से मसला हल नहीं हल हो रहा आपका, ये मसला आपका नॉलेज से हल नहीं हो रहा, आपके आखिरत के जितने भी मसाइल हैं वो नॉलेज से नहीं हल हो रहे, ठीक है, यानी नई नॉलेज के बाद आप इकदाम करेंगे और इकदाम करने के बाद जब रहमत खुदा आपके शामिल हाल होगी तो आप बच पाएंगे, तब बच पाएंगे। तो हम इस बारे में लालच और खौफ का शिकार नहीं रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, यानी किसी को नहीं पता। उमर साहब को पता था अपनी पूरी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी के आखिर में ऐसी ट्विस्ट आएगी कि जो मुझे कहाँ से, वो तो अपने आप को उस वक्त तक जन्नती समझ रहा था कि मैं सहाबी पैगंबर की औलाद हूँ, ठीक है। तो ये मामलात खाली नॉलेज से हल नहीं होते। तो डेफिनेटली नहीं, फिर भी खौफ है, फिर भी ये खौफ है कि क्या पता ना हो, क्या पता ना हो, क्या पता ऐसी कोई खराबी आ जाए, क्या पता मैं कोई ऐसी गलती कर बैठूं। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, मतलब जिंदगी में देखें बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं, वो जो उनकी मिसाल है ज़ुबैर की जिनके साथ जंग जमल हुई थी, वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, बहरहाल हो सकता है खुदा ने उनको माफ़ कर दिया हो ज़ुबैर को जो आ गए थे जंग जमल में, तला और ज़ुबैर वो सब खड़े हो गए थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ज़ुबैर को बुलाया अपने पास और उनसे कहा, बहुत अफसोस का इजहार किया कि मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, हमने और तुमने इस्लाम की खातिर शाना बशाना तलवार चलाई है, हम हर जगह पर इस्लाम की खातिर एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ तुम्हें किस हालत में। और फिर आपने एक जुमला बयान फरमाया जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक वो है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने तुमको इस हाल पर पहुँचाया, ठीक है, ये औलाद अब आपका इख्तियार है इस पर, मैं तो मुत्तकी हूँ, मैं तो परहेजगार हूँ, औलाद ऐसी हरकतें कर बैठे, अब इंसान सारी दुनिया को काउंटर कर सकता है, औलाद को काउंटर करना आसान काम है। ज़ुबैर अब्दुल्ला के वो नहीं, वो गड़बड़ हरकतें उनकी, इस किस्म का प्रेशराइज करना, तो बहरहाल ज़ुबैर फिर उसके बाद हट गए, मतलब नहीं उन्होंने जंग की। और वो मुझे मुख्तार नामे के पता, जंगे जमल, जंगे जमल, हाँ वो है, मतलब वो जो भी है, वो जो भी है, मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि भाई कुछ ही नहीं पता कि शहीद नहीं हो जाते, वो इसी तरीके से जा रहे थे, इमाम अली के किसी सिपाही ने उनको अकेला देख के कत्ल कर दिया और उनको कत्ल करके उनका सर इमाम पास लाए थे, तो आप उसको देख के रो दिए थे और आपने उसको डांटा था कि मैंने तुमको कहा था कि तुम ये काम करो,
मतलब वो लौट रहे थे या जा रहे थे,
हाँ वो तन्हा देख के उनको उस तरीके से, सही है, तो
हो
नहीं पता
सकता है हैदर भाई कि
ये।
किसी एक्ट के जरिए हो सकता है उनकी मगफिरत हो गई हो
हम
और ज्यादा
वो
अफसोस हो
अलग
गया
बात है,
हो।
लेकिन मैं आपको एक बात बता कि हमारे पास ये खौफ है या नहीं मरते दम तक, ये खौफ मैं आपको उस बात पे ला रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक चीज को जान रहा हूं तो खौफ एलिमिनेट हो गया। मैं आपको इस पॉइंट पे ला रहा हूं, आप अपने आप को उस चीज से आजाद नहीं करा सकते कि मैं हरीस हूं इस बात का कि मुझे खुदा की रहमत मिले। मैं खुदा की, मुझे ये लालच है, बिल्कुल है, मेरी निजात मेरी लालच है। अगर निजात नहीं मिलेगी कहाँ जाऊंगा मैं? अगर मरते दम तक मेरी मगफिरत नहीं होगी तो क्या उस मुसीबत में जाके फंसूंगा आखिरत की और कयामत की? तो वो है, लेकिन बस ये है कि वो खौफ और लालच जो है ना वो अपग्रेड हो जाती है, वो एक बेहतर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वो उस जगह नहीं होती कि यानी कि वो जो एक आवाम की खौफ और लालच है वो प्योरली दुनियावी परस्पेक्टिव की है, कि यानी वो दुनिया के मज़ों को एक्सटेंड करना चाहते हैं जन्नत के मज़ों में, उस लेवल की लालच नहीं है। लेकिन बहरहाल है, खौफ व हिर्स तो है, ठीक है। और इसी वजह से यानी कि खुद कुरान करीम की आयत है, बस मैं इस पर बात ख़त्म करता हूँ, कि सूरह फातिर की आयत है कि मोमिन कब कहेगा कि मुझसे रंज दूर हो गया? जन्नत में जाके, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने अब मुझसे रंज को दूर कर दिया। तो रंज जन्नत तक चलेगा आपके साथ। ठीक है, ये या ठीक है, अगर आप वली हैं तो आप दुनिया में जन्नत में चले जाइए, वो भी पॉसिबल है। आप दुनिया के अंदर अपनी जन्नत बना लीजिए, मुमकिन है ये। लेकिन जब तक इंसान हकीकतन जन्नत में नहीं चला जाता, उस वक्त तक ये लालच और खौफ बाकी रहेगा, और किसी किस्म की नॉलेज इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक, चलें। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।